أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين فإنه الناصر وخير المعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. خداوند عالم قرآن کریم میرے ساتھ فرماتے ہیں، بے شک یہ قرآن ہدایت کرنے والا ہے، اس راہ کی جو سب سے زیادہ پائیدار اور فائدہ والی ہے. ہماری گفتگو عرفانی، نظری یا تھیوریٹیکل عرفان کے بارے میں ہوگی، کہ جس میں ہم عرفان کی تاریخ، عرفان کے مصادر اور سورسز قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات میں، اور عرفان کے مختلف اسکالرز یا عرفا جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کی بایوگرافی اور ان کے حالات زندگی سے متعلق عرض کریں گے. اس کے علاوہ اس کتاب میں جو عرفان کی ہے، کہ جو شیخ مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی تقادیر کا مجموعہ ہے، اسلامی انقلاب سے پہلے، یعنی آج سے تقریباً 40 سال پہلے، یہ ان کی مختلف تقاریر تھیں کہ جن کو بعد میں کمپائل کیا گیا اور کتابی شکل میں ان کو چھاپا گیا، اور پھر آخر میں جو ہے وہ مختلف تعلیمات اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تعلیمات جو خالصتاً عرفان نظری کے لیے یا تھیوری کے عرفان کے لیے ضروری ہیں، ان کو ہم اسٹڈی کریں گے. علم عرفان دوسرے علوم کے معنی ایک علم ہے کہ جو ہمیں حقیقت تک پہنچا رہا ہے. عرفان معرفت سے ہے. عرفان کا لفظ بھی دعاؤں میں بھی استعمال، اللہم ارزقنی، کہ اے خدا میں رزق عطا فرما، صدق النیہ و عرفان الحرمہ، بار امام محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعا ہے اس میں ذکر کیا کہ عرفان کا، عرفان یعنی معرفت، معرفت یعنی پہچان، عارف یعنی جو خدا کو پہچانتا ہے. لیکن خدا کی یہ پہچان جو ایک فلسفی کو ہوتی ہے، وہ اس پہچان سے الگ ہوتی ہے جو ایک عارف کی پہچان ہوتی ہے. انشاءاللہ جب گفتگو آئے گی تو ہم اس میں عرض کریں گے کہ عرفان عارف اور عرفان فلسفی میں بنیادی فرق کیا ہے. اور دلچسپ گفتگو ہے، پھر اس میں مکالمہ کیا گیا ہے دو مختلف شخصیات اور ان کے نظریات کا. الگ کر دیں کہ عرفان ایک ایسی بدیہی حقیقت کا نام ہے کہ جو انسان کے ضمیر میں اللہ تعالیٰ نے ودیت فرمائی ہے. فطرۃ اللہ الذی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یہ اللہ کی فطرت ہے کہ جس پر انسانوں کی فطرت کو بنایا گیا. فطرہ در حقیقت بنانے سے متعلق ہے، یعنی بنانا ترجمہ کیا جائے گا، بنایا گیا ہے، قرار دیا گیا ہے. اور واقعی یہ بہت بڑا مقام ہے انسان کے لیے کہ اللہ نے اپنی فطرت پر انسان کی فطرت بنائی، جانوروں میں یا حیوانات میں یا جمادات و نباتات میں یہ چیز موجود نہیں ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان سمٹی ہوئی کائنات ہے اور کائنات پھیلا ہوا انسان ہے. اگر کائنات کو مختصر صورت میں دیکھنا چاہتے ہو تو وہ انسان ہے، اور انسان کو اگر پھیلی ہوئی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو تو وہ دنیا. اور یہی ایک قول ہے جو امام خمینی رحمۃ اللہ کتاب الخلافہ والولایہ میں لکھا ہے، امیر محمد علیہ السلام سے منسوب ایک شعر ہے: اتزعم انک جرم صغیر وفیکم طوا عالم الاکبر. اتزعم، تم یہ زعم گمان کرتے ہو، انک جرم صغیر، کہ تم ایک چھوٹے سے وجود کا نام ہو، تمہارا ایک چھوٹا سا مختصر سا وجود ہے. وفیکم طوا عالم الاکبر، جبکہ ایک عالم اکبر، ایک کبیر دنیا، بڑی دنیا تو تمہارے اندر لپیٹ دی گئی ہے، مخصوص کر دی گئی ہے، مختص کر دی گئی ہے. ان طوا یہ تمہارے اندر اس کو لپیٹ کر فیٹ کی صورت میں تمہارے اندر فیٹ کر دیا گیا ہے. جیسے سم کارڈ ہوتا ہے نا، اس کے اندر معلومات ہوتی ہے، اسی طرح خداوند عالم نے انسان کے اندر پورے عالم کی جو خصوصیات ہیں وہ اندر رکھتی ہیں. امیر مومن کہتے ہیں تم ایک وجود کا نام ہے جس کے دو کندھے ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو پیر ہیں، تمہاری ایک زبان ہے، تمہارے ہاتھ پیر ہیں، تمہارا کھانا پینا ہے، جیسے کہ عام انسان سمجھ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے انسان سے چاہا کہ وہ معرفت حاصل کرے. قرآن مجید میں شاید وہ لقد ذرانا لجحنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم قلوب لا يفقهون بها اولئك كالأنعام بل هم اضل. ہم جہنم کے اکثریت کو بھریں گے کس سے؟ انسانوں جنوں سے. کیوں؟ لہم ان کے لیے آنکھیں ہیں دیکھتے ہیں, لہم قلوب لا يفقهون بها عقل استعمال نہیں کرتے, تفکر نہیں کرتے, لہم آذان کان ہیں لا يسمعون بها اسے نہیں سنتے, ولہم اعین لا يبصرون بها اسے بصارت کا کام نہیں دیتے. اس کا مطلب انسان کو جو دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھتے, جو سننا چاہیے وہ نہیں سنتے, جو غور فکر کرنا چاہیے وہ نہیں غور فکر کرتے. یعنی جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ دیکھنا اللہ کی نظر میں دیکھنا نہیں ہے, جو سن رہے ہیں وہ اللہ کی نظر میں سننا نہیں. عرفان ہمیں وہ حقیقت عطا کرتا ہے کہ جو ہمیں وہ چیز سنوائے کہ جو ہمیں سننی چاہیے, جو اللہ کے مورد نظر اور مورد پسند ہو. انسان وہ چیز دیکھے جو اللہ کی تائید کے مطابق ہو, انسان اس چیز کے بارے میں غور فکر کرے, یہ ہے عرفان, یہ ہے وہ عرفانی زندگی. بلکہ کہا پھر خدا نے کہا اولئک کالانعام, وہ جو انسان دیکھے مگر وہ نہ دیکھے جو خدا چاہے, وہ سنے جو خدا نہ چاہے, وہ غور فکر کرے جو خدا نہ چاہے. اولئک کالانعام وہ جانور جیسے ہیں, یہ کا جانور ہے تو جو رکھے کاف کافی تشبیہ ہے, مشابہ مشابہ میں معلوم ہے یہاں پر کیا ہے. یہ نہیں کہا خدا نے, کہا تم جانور نہیں ہو, تم جانور جیسے ہو. پہلے مرحلے میں کیا کہا خدا نے؟ جو عقل استعمال نہ کرے, جو خدائی نہ دیکھے خدائی نہ سنے وہ جانور جیسا ہے. یعنی جانور میں تو یہ صلاحیت نہیں دی خدا نے, تمہیں دی, اگر تم نہیں ہو تو تمہارا درجہ پس کر کے جانور جیسا کر دیا گیا. پھر خدا نے کہا نہیں, جانور جیسے نہیں ہو, بل ہم اول, بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہو. جانور صلاحیت نہیں کہ حالانکہ حرام کے گائے کے سامنے کوئی چرا گاہ آتی وہ اس لیے پوچھتی کہ میں کسی کی تکلیف کرتی ہوں, میں حلال کہوں کہ حرام کہوں, کھاتی ہے. اس میں صلاحیت ہی نہیں, انسان میں یہ صلاحیت تھی. عرفان کیا ہے؟ وہ چشم بینا عطا کرنا ہے ہمیں, وہ حقیقت عطا کرنا ہے کہ ہم اس دنیا میں وہ چیز دیکھیں جو خدا پسند ہو, وہ چیز سمجھیں جو خدا پسند ہو, وہ چیز سوچیں جو خدا پسند ہو. یہی وجہ ہے کہ عام انسان کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ واجبات کے ساتھ نوافل ادا کرتا ہے تو خدا کہتے ہیں مجھ سے محبت کرتا ہوں, جب محبت کرتا ہوں کن تو سمع الذی یسمع بہ, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے ہاتھ و پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے. یعنی خدا کہہ رہا ہے جب انسان تقرب حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعے سے میں اس کے کان بن جاتا ہوں, اس کے کان الہی کان, اس کی آنکھیں الہی آنکھیں, اس کی زبان الہی زبان, اس کے اعمال الہی اعمال. تو جب ایک مومن جو ہے وہ نماز اور نافلہ کے ذریعے خدا کی در حقیقت قربت حاصل کرتا ہے, خدا کہتا ہے میں اس کی اعضاء میں خدائیت کو رکھ دیتا ہوں, وہ خدا, اس کی آنکھیں خدائی, اس کے کان خدائی, اس کی زبان خدائی, اس کے عمل خدائی. تو جب ایک مومن کا یہ حال ہے تو جب امیر المومنین ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا. اور اسی لیے کہا کہ وہ ید اللہ ہے, وہ عین اللہ ہے, وہ وجود اللہ. یہ وہ چیز ہے عرفان کے جو ہمیں در حقیقت کیا ہے خدا تک لے جا رہی ہے. علم عرفان در حقیقت ایک خود ایک نالج ہے, ایک علم ہے, ایک سبجیکٹ ہے کہ جس کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے, اور فلسفے کی مانند بھی اس کو کہا گیا ہے. لہذا علم عرفان کی دو حصے کیے جاتے ہیں, ایک تھیوری ایک پریکٹیکل. ہم یہاں پر تھیوری کی جانب جا رہے ہیں. پریکٹیکل عرفان کیا ہے؟ پریکٹیکل عرفان اگر آپ نے دیکھنا ہے جو واقعاً سخت ہے اور جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بغیر استاد کی رہنمائی کے کوئی انسان اس وادی میں قدم نہ رکھے وہ گمراہ ہو جائے گا. وہ شیطانی اور رحمانی آوازوں اور الہام میں فرق نہیں کر سکے گا. اکثر صوفیہ جو بہک جاتے ہیں بگڑ جاتے ہیں ان کی وجہ کیا ہے؟ وہ رحمانی اور شیطانی جلووں میں فرق نہیں کر پاتے. اس لیے استاد رہنما اگر نہ ہو, الحمدللہ تشیع میں عرفان نظری کے لحاظ سے تشیع بہت امیر ہے اور عرفان عملی کے لحاظ سے بہت امیر ہے. لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ عرفان نظری اور عملی ایک ایسی بات ہی ہے کہ جس میں ہر انسان نہیں تیر سکتا اور بغیر استاد کے. और दुनिया के जितने भी उलूम हैं उनमें आप उस्ताद के पास जाते हैं, लेकिन इरफान में आपका उस्ताद आपके पास आता है। फर्क ये है, इरफान में उस्ताद आपके पास आएगा, जैसे मैं हूं चूंकि आप क्लास में हैं, मैं इधर आया हूं, लेकिन ये तो खैर मजाक था, लेकिन आपकी अर्थ करूँ आम उलू में आप उस्ताद के पास जाते, इरफान में उस्ताद आपके पास आता है। तो हमने अपने उस्ताद, जब उस्ताद ने हमें हुक्म में कहा आगे वाली खुदा उनको दूरे मदद करे, बहुत अच्छे, यानी बहुत कम उस्ताद होते हैं जिनका इंतजार करता है बंदा। कभी छुट्टी होती थी ना तो उस्ताद नहीं आ जाए, शुक्र यार आज छुट्टी हो गई, लेकिन वो उस्ताद ऐसा था वाकई कि जिसका इंतजार रहता, वो नहीं आता था तो दिल मलूल हो जाते थे, ऐसा उस्ताद था, यानी अखलाकी तौर पे, इल्मी तौर पे, अमली तौर पे। गर्ज ये कि कम उस्ताद ऐसे होते हैं, वही अक्सर उस्ताद ऐसे होते हैं यार आज नहीं है चलो छुट्टी। तो वो उनसे हमने पूछा कि उनकी बातें, उनके अखलाकियात आज भी हमारे जहन और पाल का छाए हुए, वो कहते थे कि जित, हमने पूछा भाई हमारा उस्ताद कब आएगा, उनका जितना तुम अपने आप की इस्लाह करोगे, अपने आप को गुनाहों से बचाओगे, तुम्हारा उस्ताद इरफान उतना ही तुम्हारे नज़दीक आता चला जाएगा। दूसरे अल्फाज में जितना तुम मुखलिस बनने की कोशिश करोगे उतना ही मुखलसियत से तुम्हारा फासला कम होता रहेगा। तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, खुदा तुम्हें मुखलस करता चला जाएगा। मुखलिस जो अपने आप को खालिस करे, मुखलस जिसे खुदा खालिस करे। तो अगर हम अपने आप को खालिस करने का मरहला वार काम अंजाम दें, खुद बहुत खुदा मुखलस करने के कामों का अंजाम देगा। जाहिर सी बात है 100 किलोमीटर का फासला तय करना है आपने, यहाँ से यहाँ तक, कराची से हैदराबाद तक, और जब आप हरकत ही नहीं कर रहे तो 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर रहेगा, 100 साल तक 100 ही रहेगा, ये कम नहीं होगा। जितना मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा ये फासला कम होता रहेगा, यहाँ 20 तय किया 80 रह गए, 60 तय किया 40 रह गए, 70 तय किया 30 रह गए, 90 तय किया 10 रह गए। मुखलिस मुझे बनना है, खालिस मुझे बनना है, खुद बखुद जो है वो इरफान का ये उस्ताद, कोई उस्ताद हो सकता है इंसान हो सकता है, कोई फकीर हो सकता है, कोई आम इंसान हो सकता है, हत्ता कोई जानवर आपको कुछ सिखा सकता है। हाबिल और काबिल के मसले में काबिल मोहताज था, क्या करूं, खुदा ने कब्जे को भेजा। रिवायात में है कि जानवरों से कुछ चीजें सीखो, क्यों, क्योंकि इंसान उनसे सीखना चाहता है। ये मिसाल ये कि वो उस्ताद के तौर पर है, ये जो मैंने कहा है कि उस्ताद यानी इंसान को अपने चश्मे इबरत को बाज रखना चाहिए, खोलना चाहिए। मुमकिन नहीं कि हर जगह आपको उस्ताद आके नसीहत करे तो आप जो है अकलमंद होंगे और आपके आगे खुलेंगी भी जाके खुलेंगी। बाज़ औक़ात एक आम इंसान एक बात ऐसी कह जाता है, इंसान भेज जाता है। बाज़ औक़ात एक मंजर, एक एक्सीडेंट, एक सीन मुझे वो कुछ दिखा देता है जो मैं सदियों में नहीं देखता, सदियों में नहीं सुन पाता। बाज़ औक़ात एक जानवर मुझे कोई चीज सिखा देता है जो मैं किसी किताब में नहीं पढ़ता। वो कहते हैं ना कि वक्त वो कुछ सिखाता है जो किताब में उस्ताद नहीं सिखाता। इरफान एक मुकद्दस इल्म है, लेकिन ये मुकद्दस उसी सूरत में हो सकता है कि जब हम उसको बिल्कुल उसी तरीके से हासिल करें जिस तरह हमें कहा गया बकौल इमाम खुमैनी के, कि इंसान इल्म इरफान भी हासिल करे, इल्म तौहीद भी, लेकिन अगर उसका मकसद खुदा न हो तो यही इल्म तौहीद और इरफान उसको जहन्नम में ले जाने का सबब बनेगा। बस इल्म इरफान के दो हिस्से हैं, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। हमारी बहस यहाँ पर थ्योरी के बारे में है। प्रैक्टिकल को अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या होता है तो आयतुल्लाह तबातबाई का एक मकाला है इस सिलसिले में, इल्म इरफान के सिलसिले में, वो आप रुजू कर सकते हैं। उसके लिए उर्दू में किताब है सैर व सुलूक जो जामिया तालीमात इस्लामिया ने छापी थी, जिसके 3 हिस्से हैं। एक इमाम खुमैनी का हिस्सा है जिसमें तफसीर सूरह अलहम्द लिखी गई है, दूसरा हिस्सा आयतुल्लाह तबतबाई का है जिन्होंने इरफान अमली की तरफ उसमें तवज्जो दी, और तीसरा हिस्सा शेख मुतारी का है जो इसी का तर्जुमा है इरफान इस्लामी का। इमाम खुमैनी ने तफसीर सूरह अलहम्द शुरू की, इरफानी तफसीर थी, इरफानी तफसीर थी। जब पढ़ेंगे तो आपका अंदाजा होगा, वो बातें आपको यानी हर जगह नजर नहीं आएंगी। तो उस पर लोगों ने बहुत शोर शराबा किया, वावेला किया कि ये बातें जो हो दुरुस्त नहीं, हजर नहीं, मजबूर ने मोहम्मद को ख़त्म करना पड़ा। वावेला अगर मोहम्मद ये बातें वो कर जाते तो बहुत फ़ायदा होता। बहरहाल लेकिन वो खुद अपनी जगह एक शाहकार है। तो सैर सलूक जो उर्दू में किताब है उसके तीन हिस्से हैं, इमाम खुमैनी का, आयतुल्लाह तबरबाई का और आयतुल्लाह शेख मुख्तारी का। तवज्जो रखिएगा, पहला हिस्सा तफसीर सूरह अलम्द है, वो भी बहुत मज़ेदार है। दूसरा हिस्सा आयतुल्लाह तबरबाई का जो अमली तौर पर उन्होंने इरफान की तवज्जो दी। तीसरा यही किताब है जो उर्दू में वहाँ मौजूद है, वहाँ रुजू कर सकते हैं। कहते हैं कि जिस तरह दूसरे उलूम हैं उसी तरीके से इरफान भी एक इल्म है। जिस तरह दूसरे उलूम अपनी एक खास बहस रखते हैं, इरफान भी एक बहस रखता है। जिस तरह दूसरे उलूम के टीचर्स होते हैं, इरफान का भी एक टीचर होता है, ये टीचर्स होते हैं। जिस तरह दूसरे उलूम के मसादिर होते हैं, सोर्स होता है कहाँ से लिया गया है, इल्म इरफान का भी अपना एक सोर्स है। बाज़ उलूम ऐसे होते हैं जिनके इस्तेदलाल अकली होते हैं, फलसफी होते हैं, लेकिन इल्म इरफान दर हकीकत अकली इस्तेदलालों के बजाय शुहूदी इस्तेदलाल में गुफ्तगू करता है, ठीक है। और ये बात है उसकी फिर अपनी एक वर्थ है, उसकी एक हकीकत है। ऐसा नहीं है कि हवाओं में बम बबू ये इल्म इरफान है, नहीं, उसकी एक वर्थ होती है, हकीकत होती है। फिर हर इल्म सीखने वाले के पास कुछ अलामतें होती हैं जिससे पता चलता है कि शख्स के पास ये इल्म मौजूद है। आप डॉक्टर हैं तो आपके पास ऐसा इल्म है जिससे मैं समझ सकता हूँ आपकी आदतें, आपके अथवार, आपकी डिग्री, आपकी सनद के आप जो हैं, आपने मेडिकल सीखा, आप इंजीनियर हैं, आप फलां शोबे से ताल्लुक रखते हैं। इल्म इरफान के बाद ही इंसान के पास कुछ ऐसी अलामतें होनी चाहिए जिससे ये वाज़ेह हो सके कि इंसान ने इल्म इरफान सीखा है। अब जाहिर बात है कि अब जिस तरह दूसरे उलूम में जाली डॉक्टर आ रहे हैं, जाली वकला आ रहे हैं, अब आप देख रहे हैं डॉक्टर वकीलों की जंग देख चुके हैं आप, ठीक है ना। ये पढ़े लिखे अफराद समझे जाते हैं हमारे डॉक्टर वकील, किस तरह बच्चों की तरह आपस में लड़ रहे थे, किस तरह जंगली बजे से हमले कर रहे थे, किस तरह इनके मुँह से अल्फाज निकल रहे थे, इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। उसी तरह इल्म इरफान जो खालिस सरीर इल्म था, इसमें भी दुश्मन ने पूरी कोशिश ये की है कि इसको भी आबाकी कर दिया जाए। आबाकी फारसी में सलाह इस्तेमाल की जाती है, यानी जाली बना दिए, बेहसियत बना दिया जाए। जाली इरफान, जाली आरिफ, जाली नाम नहाद अफराद जो इरफान का ढोंग रचाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। ये पीर बाबा और ये तावीज़ पढ़ने वाले जिनकी आप अक्सरियत कली खुलते हुए आपको सोशल मीडिया पर इनके हकायक नज़र आ रहे होते हैं, ये सब क्या है, ये सब जाली अफराद है जो इरफान के नाम से नहीं लेकिन इरफानी की बिगड़ी शिकल सूफियत और इस कसम की चीज़ों से लोगों को गुमराह कर रहे होते हैं। कहते हैं कि इरफान जो वो हस्ती से कायनात से दर हकीकत बहस करता है, और इरफान जो है वो हस्ती के बारे में बहस करता है वो इरफानी निगाह होती है। कहते हैं फलसफी वजूद के बारे में बहस करता है, हस्ती हस्ते या वजूद के बारे में बहस करता है, लेकिन इरफान खुदा के वजूद के बारे में बहस करता है, एक खास वजूद के बारे में, फलसफी आम वजूद के बारे में बहस करता है। मतलब फलसफी कहता है खुदा असली है या खुदा के अलावा कोई और असली, यानी वजूद जो है या खुदा का है या गैर खुदा का, ये असली कौन सा है। फलसफी इस पे आर्गुमेंट करेगा, फलसफी इस पे सदरा लेकर आएगा, खुदा वाजिबुल वजूद है या कायम ज़ात है, खुदा का वजूद अपना है या किसी से मांगा हुआ है, किसी ज़ात के सहारे उसका वजूद कायम है, खुदा मुमकिन वजूद है या कायम बिल गैर है, खुदा आया मुमकिन हो मुमकिन ना हो, ऐसा है खुदा या खुदा कायम बिल गैर या किसी वाजिब वजूद का मालूम है, किसी का नतीजा है, किसी का असर है, किसी का रिजल्ट है। लेकिन आरिफ की निगाह क्या होती है खुदा के बारे में, कहते हैं कि गैर खुदा अर नजर आरिफ गैर खुदा बनवान अशियाई के दर बराबर खुदा का قرار دے رہتے باشاں ہر چند معلول ہو باشاں وجود نہ دارا ہے۔ کہتے ہیں عارف کی نگاہوں میں اہمیت کس کی ہوتی ہے، صرف خدا کی ہوتی ہے، خدا کے علاوہ وہ دوسری کسی چیز کو حیثیت نہیں دیتا، خدا خدا خدا، اگرچہ اس کا معلول ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا فلسفی یہ کہے گا یہ اصل وجود ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے، मैं इसमें बहस करूंगा, इसमें बहस करूंगा, आया खुदा वाजिब वजूद है या मुमकिन वजूद है, खुदा का होना जरूरी है या खुदा का होना मुमकिन है, खुदा हो और उसका खुदा ना हो। लेकिन आरिफ जो बहस करेगा वो खुदा के बारे में क्या बहस करेगा, वो ये बहस करेगा कि खुदा है और खुदा है बस, उसके मालूलात, उसके नताज, उसके असरात, वो उसको बहस नहीं करता। वो अब ये कैसे होगा अब तसव्वुर करना मुश्किल है, कि जब गुफ्तगू आएगी तो उसको फिर हल करेंगे। बल्कि वो खुदा के वजूद को तमाम चीजों पे हावी समझते हुए खुदा के वजूद को स्टडी कर रहा है, यहां तक उसके अस्मा, उसकी सिफात, उसके हालात, उसकी तजल्ली, उसके जलवे, उसकी शुगुना जिसको कहा जाता है, सबको खुदा की जात के मातहत करार देता है। खुदा का वजूद असली है, खुदा की सिफात, खुदा की शुगुना, खुदा की तजल्लियात, खुदा के जलवे सब सानवी हैसियत रखते हैं। बात बात है यार, कहते हैं यही वजह है कि आरिफ और फलसफी की निगाहों का फर्क मौजूद है। आरिफ किसी और निगाह से देखता है, फलसफी किसी और निगाह से देखता है। दुरूद ए मोहम्मद वाले
मोहम्मद,
फलसफी अक्ल व फहम व दलील व इस्तदलाल का सहारा लेता है, ये आर्गुमेंट, ये दलील, ये बुरहान, ये सारी चीजें। लेकिन आरिफ जो होता है वो अक्ल व फहम के बजाय वो हकीकत हस्ती से बहस करता है। ऐसा नहीं है कि आरिफ जो है वो बगैर किसी दलील के खुदा को तस्लीम करता है, तस्लीम करता है, लेकिन जो अंदाज है देखने का, विजन है देखने का, वो आरिफ से अलग होता है। आरिफ दलील लेकर आता है और फिर वजूद पर एक दलील कायम करता है कि खुदा है, सूरज निकला है तो दिन है, तवज्जो रखिएगा। लेकिन आरिफ क्या कहता है, ये रोशनी का होना सूरज के निकलने और दिन के होने का दलील है, फर्क है। एक उधर से देखता है तो दिन के होने का यकीन करता है, और एक रोशनी देखकर जो है, ये मोहम्मद हुसैन का खूबसूरत जुमला है, पूरे जुमला तो मजे आगे कि मत अखिब तहता तहताज इला दलील, तकरीबन यही जुमला ही है मिलता जुलता दुआए आरफा में, तू कब गायब था कि तुझे दलील की जरूरत है, तो गायब कब था। यानी आरिफ होता है जिसकी निगाहों से खुदा गायब नहीं होता, लिहाजा वो दिल से दर हकीकत खुदा को देखता है, और दिल से शहूद जिसको कहते हैं शहादत, यानी दिल से शहादत देना, दिल से शहूद, एक गैब होता है एक शहूद होता है। गैब होता है जो दर हकीकत आप जिसे नहीं जानते, शहूद क्या होता है जिससे आप अंदर से डर के कर सकें, आप यहाँ हैं नजर आ रहे हैं, आप यहाँ नहीं होंगे, हम कहेंगे जनाब आज फला स्टूडेंट नहीं आया, दलील यहाँ मौजूद नहीं है, गायब है, उसका जिसम मौजूद नहीं, लेकिन खुद ये मेरे लिए ना आपके लिए, मसलन ये नहीं आया आज, ये क्यों नहीं आया, ये आज यहाँ नहीं है तो हम बता रहे ये नहीं आया, ये गायब है, ये मौजूद है मुझे नजर आ रहा है। लेकिन क्या जिस तरह मेरे लिए इनका वजूद गायब और हाजिर होता है, क्या हर इंसान के लिए उसका अपना वजूद हाजिर और गायब होता है? नहीं। जिस तरह आप अपने आप को पहचानते कि मैं हूं, मैं बेदार हूं, मैं दर सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं नमाज पढ़ रहा हूं, कोई किसी दलील की जरूरत होती है आपको? नहीं। उसी तरीके से इसी को शुरू कर कि आपको अपने वजूद को साबित करने के लिए, आपको अपना होने के लिए कि मैं हूं, जिंदा हूं, सुन रहा हूं, कोई दलील की जरूरत है? मुझे तो ये ऐसा ना हो सकता कि वो आप नहीं सुन रहे, आप तवज्जो नहीं दे रहे, आप जो है किसी और दुनिया में, आप जो है वो किसी और काम में मसरूफ हैं, लेकिन खुद आपके लिए तो किसी दलील की जरूरत नहीं। इसी को शुहूद कहा जाता है। आरिफ शुहूद से काम रखता है, फलसफी दलील से लेके आता है, फिर हकीकत तक पहुंचता है, और आरिफ जो है वो बराह-ए-रास्त दिल के जरिए से जो है वो शुहूद के मरहले से गुजरता हुआ हकीकत तक पहुंचता है, फर्क है दोनों में। लेकिन उसके बावजूद भी आरिफ जो है वो उन मुकदमात को तय कर चुका होता है जिनको आरिफ गुजार रहा होता है, वो उनसे गुजर कर हकीकत क्या है उस हकीकत तक पहुंचता है। वाज़ेह बात, यानी आपसे पूछेगा कि आज दिन है तो क्या दलील है, आप कहेंगे दर्स हो रहा है, छुट्टी नहीं है, आज मदरसा चल रहा है, आज सब लोग जाग रहे हैं, आप मुख्तलिफ चीजें लेकर आएंगे, दलील लेकर आएंगे। लेकिन किसी आदमी से पूछेगा आज दिन है कह रहे ये रोशनी का होना दिन के होने की दलील है, अच्छा इसके लिए किसी दलील की और जरूरत नहीं है, वाज़े ही बात। तो फर्क ये है,
कितना टाइम रह गया,
बस फर्क है दोनों में, और इस फर्क को हम इंशाल्लाह आगे बढ़ाए आगे पढ़ेंगे तो आपको बड़ा लुत्फ आएगा कि इन दोनों में मकसद क्या है। कोई सवाल तो नहीं है
आपको? यानी जैसे आपने कहा है कि जो इल्म फलसफी है उसमें जो हम काफ़ी दलीलें ले सकते हैं, फिर दलीलों को जमा करके वो बात साबित करते हैं। इरफान में तो यही है सर, इसको जो सूरज की रोशनी ये भी एक दलील है हमारे लिए, सिर्फ के लिए उसमें बहुत ज़्यादा दलीलें हैं जिसमें एक दलील।
देखिए मैंने अर्ज़ किया कि एक दफ़ा आप इल्लत से मालूम तक आते हैं और एक मालूम से इल्लत फर्क है दोनों में। एक तरफ आप कॉज को देख के इफेक्ट को समझते हैं, एक तरफ इफेक्ट को देख के कॉज को समझ रहे होते हैं, फर्क है दोनों में। बात वाजे हुई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं शायद मुताबिक कोई मसला है, तो ईजी रहे जी, इस वजह से परेशान ना हो आप, इजी रहें, कोई सवाल करना है कोई मुश्किल हो रही है कोई लग मुश्किल लग रहा है पूछ सकते हैं, कोई तो मसला नहीं है।
और क्लास के लिए यानी इब्तदाई जो है ठीक है, उसके लिए क्या यानी जो इल्म फलसफी मुकदम है या इल्म इरफान?
देखिए मैंने कहा कि इल्म इरफान एक इल्म है, इल्म फलसफा एक इल्म है, दोनों के अपने अपने मकासद हैं, अपनी अपनी बुनियादें हैं, अपना अपना एक मैदान है, मजाल है दोनों का, मजाल फारसी हाँ मजाल उर्दू पहले मरहले तो इंसान इसी दुनिया ज़ाहरी हवास को देखेगा, छुएगा, ये गर्म है ये ठंडा है ये रोशन है ये तारीख है ये दिन है रात है, दलाई तो समझेगा इंसान, माँ के पेट से तो सीख के नहीं आया ना। ऐसे ऐसा क्या होगा जो फलसफी होते हैं वो इन्हीं चीजों में रह जाते हैं, लेकिन जो आरिफ होता है वो अपने आप को इससे बुलंद ले जाता है, फिर वो दलील का मोहताज नहीं होता। मैं अर्ज कर रहा हूँ दलील का मोहताज नहीं होता कि उसे बताया जाए दिन निकल आ गया, उठो बेटा आंखें खोलो सूरज निकला, क्या तारे वागे सारी दुनिया वाले जागे, ठीक है ना, उसको बताने की जरूरत नहीं है, फिर वो शहूदी तौर पर खुद महसूस करेगा। इसके आसान तरीके सर कोई भी आप नहीं आए आप मिलेगा खाए क्योंकि आप यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन खुद आप अपने लिए हाजिर हैं या नहीं है, आपको किसी दलील की जरूरत नहीं कि मैं बताऊं सर मैं हाजिर हूं मैं प्रेजेंट लगा रहा हूं मैं मौजूद हूं यहां पे, नहीं वाजे ये सबसे बेहतरीन दलील है, अगर ये समझ में आ जाए तो बहुत मसला हल हो जाए। अब यहां पे आते हैं कि खुद इस्लाम में इरफान से मुताल्लिक कुछ नजरियात पाए जाते हैं, बहुत से लोगों ने इरफान को कबूल नहीं किया, वो कहते हैं कि इरफान एक गैर मजहबी चीज थी जिसको मजहब में लाया गया, जिस तरह कहते हैं फलसफा और मंतिक गैर इस्लामी थे, ठीक है ना, इनको लाया गया, हम कहते अगर चे कि गैर इस्लामी ही सही, लेकिन ये इल्म आली के तौर पर, इल्म आली यानी टोटल नॉलेज है, ये बसात खुद लॉजिक का और मंतिक का फलसफे का मकसद नहीं है, वे किसी हकीकत तक पहुंचाने के लिए है। वो ये कहते हैं कि ये इल्म इरफान जो है ये बाहर की चीज़ है, उसको आपने एक इस्लामी रंग दे दिया, खुदाई रंग दे दिया, इलाही रंग दे दिया, उसको आपने कपड़े पहना कर इस्लाम में कर दिया, आया वाकई ऐसा ही है, बाद ने कहा कि नहीं ये इस्लामी है, बाद ने कहा कि ये इनहराफ है इस्लामी तालीमात से। अब उसको देख लेते हैं कि शहीद मुताहिर ने उसको यहाँ किस तरह बयान किया है। कहते हैं कि ये बात तो तय है कि इस इरफान इस्लामी ने, इरफान असली इस्लामी ने, यानी जो असल इरफान है जिसकी ताईद अभी हमें आगे नजर आएगी, कभी भी इरफान ने इस्लाम से आगे जाकर कोई बात नहीं की, कुरान से मावरा कोई बात नहीं की। मावरा अदालत कतल का नाम सुना है ना, ये अदालत मौजूद हो आप जाए कतल करने जाएंगे जरा ये चोर था इसको मार दिया, इसको कहते हैं मावरा अदालत कतल, यानी आपको इख्तियार नहीं है और आपने जो काम कर दिया। इरफान मावरा इस्लाम कोई लफ्ज नहीं कहता, जो कुछ कहता है कुरान और इस्लाम और अहले बैत की तालीमात के साथ में कहता है, पहली बात तो ठीक है ना, मावरा इस्लाम कोई भी बात नहीं है, ना कोई बात इस बात के लिए ना कोई बात नफी के लिए, कोई भी चीज उसकी गैर इस्लाम नहीं, पहली बात तो ये हो गई। बेहतर यह है कि औराफा इस बात को दर्क करते हैं और इस बात को कहते हैं कि उन्होंने दूसरों से ज्यादा हकायक को ज्यादा कश्फ किया है। इरफान क्या है, अपनी इस्लाह करना ताकि कायनात के हकायक तुम्हें मुतजल्ली हों। मसलन एक आईना लें, आप उसको रख दें, कुछ अरसे बाद मिट्टी धूल आ जाएगी, अट जाएगा मिट्टी में, उस पर रिफ्लेक्शन का जो काम है वो पूरा नहीं कर सकेगा। उसको साफ करें वो दोबारा से साफ हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग का इनेकास का काम शुरू कर देगा। इंसान की ज़ात एक आईना है, अगर ये दुनियावी गुनाहों और पस्तियों और मादियात में पड़ी रहेगी, इस पर एक जंग चढ़ता रहेगा, एक पर्दा आता रहेगा, ये इनेकास नहीं कर सकेगी। इस्लाम ये चाहता है ये जो ज़ात का आईना, रूह का आईना, ये बिल्कुल शफाफ हो, इतने शफाफ हो कि जो खुदाई तालीमात हैं वो मुनक्किस कर सके, ले सके, ठीक है ना। लिहाजा वो ये कहते हैं कि हमने इस तहारत बातनी और तस्वीर के जरिए से कायनात हकायक को दूसरों से बेहतर समझा है। और बाद लोगों ने कहा कि हम दूसरों से ज्यादा मुसलमान हैं, हम दूसरों से ज्यादा बेहतर समझने वाले हैं। हो और यही वजह है कि वराफा और इल्म इरफान के मानने वाले जो कुछ भी कहते हैं या कुरान से कहते हैं या अलबैत से कहते हैं या सहाबा से, उसको नफल करते हैं, इन्हें उनके पास दलील मौजूद है। अब यहाँ पे कहते हैं कि मुख्तलिफ कस्म के नज़रियात हैं कि जो इरफान के बारे में, बहुत से मुहद्दिसों और फुकहा का नज़रिया ये है कि असल वराफा इस्लाम के पाबंदी नहीं है, इन इस्लामी तालीमात और शरीयत की पाबंदी से कोई ताल्लुक ही नहीं, और ये किताब सुन्नत पर जो अमल करते हैं वो आवाम फरेबी के लिए करते हैं, आवाम को धोखा देने के लिए करते हैं, मदद अपने उल्लू सीधा करने के लिए कि हम कुरान और हदीस के मानने वाले हैं, किताब सुन्नत के, या आवाम को धोखा देने के लिए। ये बात और बात मुहद्दिसीन और फुकहा का नजरिया है, लोगों के दिलों को अपनी तरफ जज्ब करने के लिए करते हैं, और इरफान का इस्लाम से कोई भी ताल्लुक नहीं है। इस्लाम मानना चाहता हूँ इरफान की कोई भी कुल सीधी नहीं है, टेढ़ा का टेढ़ा ही है, एक नजरिया। कहते हैं कि लेकिन असल हाजिर के बहुत से मुतजद्दिद और रोशन फिकर और फुकहा और उलमा का नजरिया ये है कि मुतजद्दिद कि जो इस्लाम से जिनकी ज्यादा है नहीं, सरसरी अंदाज से इस्लाम को स्टडी किया है, सरसरी अंदाज से इस दीन को उसकी डेप्थ और गहराई के साथ स्टडी नहीं किया, उनके बारे में कह रहे हैं कि बा इस्लाम मैं खूबी ना दारन, यानी इस्लाम के साथ कोई बहुत अच्छा होगा सलूक नहीं है, सलूक से मर गया, इस्लाम को समझा नहीं है, ठीक है ना, वो लोग कहते हैं। और जो हर चीज को जायज शुमार करते हैं, बहुत से मुतजद्दिद अफराद कहते हैं जायज है, दुरुस्त है, ठीक है, दादा अंदर जाने की जरूरत नहीं, बस ठीक है, दादा इल्म हासिल मत करो, दादा गहराई में मत जाओ, अक्सर लोगों को सीधी सी नमाज पढ़ो रोज देखो बस काफी है, गहराई में मत जाओ, आपको अक्सर लोग ये कहते हुए नजर आएंगे, तो उनकी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वराफा ईमान नहीं रखते और इस्लाम पर उनका अकीदा नहीं है, बल्कि इरफान तसव्वुफ एक तहरीक थी जो गैर अरब से इस्लाम और अरबों को दबाने के लिए इस्तेमाल की गई है, लेकिन उसको जो लिबास पहनाया गया, मेकअप किया गया, वो रूहानियत और स्पिरिचुअल एक मेकअप के लिए है, इसकी कोई हकीकत नहीं। ये भी पहले ग्रोह की क्या कहते हैं मुखालफत करते हैं, ठीक है ना, लेकिन ग्रोह अव्वल जो था, पहला जो नजरिया था वो इस्लाम में था, इस्लाम अपनी जगह, ये इस्लाम से इनका कोई रब्ता नहीं है। दूसरा जो है इनकी भी नफी कर रहे हैं और इस्लाम की भी नफी करते हैं, ये रोशन फिकर अफराद के, जिनका हमारे दोस्त कहते हैं कि रोशन फिकर से मतलब रोशन फिकर अफराद हो। उसको तीसरा नजरिया क्या है, बेतरफ अफराद, बेतरफ ना इधर है ना उधर, इधर के खुद ना उधर के, ठीक। वो कहते हैं कि जनाब ठीक है आप रहे ना रहे, करें ना करें, करें तो अच्छा है ना करें तो कोई मसला नहीं है, ये तीसरा किस्म का नजरिया यहाँ पे बयान किया गया है। लेकिन कहते हैं कि ये जिद्दियत, ये हमदर्मी, ये इख्तलाफ, ये टकराव, ये बहरहाल मौजूद रहा है तारीख में, और यही वजह है कि इरफान को हर दौर में टफ टाइम मिला है, हर दौर में इरफान को सख्त हालात का सामना करना पड़ा है, حتیٰ کہ خود رسول اللہ کو بھی خدا میں تعلیم کو بھی اپنے زمانے میں اس جہت سے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. اچھا اب یہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر اس کو اگر پڑھ لیتے ہیں تو اس کو تھوڑا واضح ہو جائے گا. کہتے ہیں نظریہ جو تیسرا ہے وہ بے گروہ افراد کا ہے. یہ گروہ عرفان و تصوف میں خصوصاً عملی عرفان میں کہ جہاں سے وہ ایک خاص سمت حاصل کرتا ہے. مثلا نظریہ بیٹھے میں آپ کا آئیڈیا ہے, آپ کا ایک نظریہ ہے, لیکن جب آپ پریکٹیکل میں آتے ہیں تو آپ موضوع سے الگ نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, مثلا آپ دو ایک سنی شیعہ بیٹھا ہوا, نہیں پتا کون سنی کون شیعہ, کیونکہ نماز پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا جو ہاتھ کھول کے پڑھا ہے وہ مثلا شیعہ ہے, جو ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے وہ سنی. مثلا میں اس کا تھا عرفان بھی ایسے ہی, عرفان نظری میں کوئی اختلاف نہیں ہے, عرفان عملی میں کیا ہے جو اس کے پیروکار ہوتے ہیں ان کا ایک خاص انداز ہوتا ہے. اب وہ انداز کیا ہے کیا نہیں ہے کتنا صحیح کتنا غلط ہے ہم اس سے بحث نہیں کر رہے, لیکن وہ پریکٹیکل میں جب آئیں گے تو ایک فرقے کے طور پہ نظر آئیں گے, ایک گروہ ایک اسکول آف تھاٹ کے طور پہ نظر آئیں گے. بات باتیں ہو رہی ہیں نا, عملی میں کوئی نظری میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, تھیوری میں کوئی مسئلہ نہیں, پریکٹیکل میں وہ نظر آتے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے وہ ایک فرقہ بنتا ہے گروہ بنتا ہے وہاں پہ ہمیں کچھ بدعتیں نظر آتی ہیں عرفان میں, عرفان میں انحرافات نظر آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اضافے نظر آتے ہیں جو کتاب خدا اور رسول اللہ کی سنت سے موافقت نہیں کرتے, ٹکراتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد کہتے ہیں لیکن عرفا دوسرے جتنے بھی طبقات ہیں اسلام کے علم کلام کے ماننے والوں, فقہ کے ماننے والوں, اصول کے ماننے والوں, تفسیر کے ماننے والوں, فلسفہ کے ماننے والوں, سب کے مانے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اسلام سے ماورہ کوئی بات نہیں کرتے, ہم جو ہیں نہیں چاہتے کہ اسلام کے مخالف جائیں, اور ہم نہیں چاہتے کہ اسلام کو چھوڑ کر کوئی نئی چیزیں اپنی جانب سے جو ہے وہ ایجاد کریں اور لوگوں سے الگ نظر آئے. لیکن کہتے ہیں کہ بہرحال یہ مسئلہ رہا ہے تاریخ میں کہ عرفان کو سخت نگاہوں کا سامنا رہا ہے. شہید مدنی کہتے ہیں کہ ما نظر سبوم ترجیح میں کریں, ہم نظر سبوم کو اختیار کریں گے. کیوں؟ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ عرفا کی بری نیت نہیں رہی ہے, جو کچھ بھی بیان کیا انہوں نے سچی نیت سے بیان کیا ہے, لیکن اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ جو چیز لازم ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں متخصص اسپیشل جو صلاحیت رکھتے ہیں مہارت رکھتے ہیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ہمیشہ صحیح علم عرفان حاصل کرنے کے لیے اس کے صحیح استاد تک رسائی حاصل کرنی چاہیے, تاکہ ہم اصل جو ہے جو عرفان ہے جو تعلیمات ہو سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.